आज का हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें शक्तियों को हम बांट देते हैं। बांटना कैसे? जैसे उच्च अधिकारी, फिर उसके कुछ अधीनस्थ अधिकारी, फिर उनके कुछ अधीनस्थ अधिकारी, इस तरह से। यानी कि शक्ति, कोई भी एक पावर जिसको हम बांट रहे हैं, ये लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का विलोम शब्द भी कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जहाँ शक्तियों को एक जगह, एक सत्ता, एक पावर के उसमें होती है, जो पावर होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जो पावर होती है वो बटी हुई होती है। इसमें जो सहभागिता होती है, यह लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है। इसका ध्येय शासन कार्यों में लोगों की अधिकतम और जीवन की सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है। यह जिज्ञासा का विषय है कि लोकतंत्र की अवधारणा में जब विकेंद्रीकरण का विचार अंतर्निहित है, तो विकेंद्रीकरण के प्रभाव में लोकतांत्रिक शब्द क्यों लाया गया है। तो जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि विकेंद्रीकरण से पूर्व लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है, यानी कि उसके भी कुछ अर्थ हैं। वस्तुतः है, लोकतांत्रिक शब्द विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करता है। जो सत्ता के विकेंद्रीकरण में लोगों के व्यापक, अधिकतम और निकटतम सहयोग की आकांक्षाओं को अधिक स्पष्ट कर देता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कल्याण की योजनाओं को बनाने व उसकी पहल करने तथा स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें कार्य निर्मित करने के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल आपका स्टाफ है, वो किसी एक शक्ति के अंडर में ना आकर के वो पावर खुद यूज़ कर रहा है। ठीक, इसमें पावर का हम बंटवारा कर देते हैं। हमारा जो केंद्र है, केंद्र शक्तियों को स्टेट को सौंप देता है। फिर स्टेट क्या करता है? स्टेट अपने अंदर अपने अधिकारियों को उस शक्ति को बांट देता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जहां लोगों की सहभागिता पर बल देता है, वहीं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को बढ़ावा भी देता है। बहुत से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन के समानार्थक समझकर भ्रमित होते हैं। यद्यपि इन शब्दों में कुछ समान गुण हो सकते हैं, फिर भी समानार्थक नहीं हैं। प्रत्यायोजन में सत्ता का उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को स्थानांतरण होता है। यानी कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को, या उनका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनको जो पावर है वो दे भी सकते हैं। वो उस सत्ता के उपयोग के लिए इच्छा के अनुरूप स्वतंत्र नहीं होता। यानी कि वो उस पावर की पावर को क्या बोलते हैं, यूटिलाइज करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता जो उसके पास होनी चाहिए, अपितु उसका निर्वहन उच्च अधिकारियों के निर्देश और प्रसाद की सीमाओं के अंतर्गत करना होता है। जबकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांत का विस्तार है। इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों का अपने कार्यों के बिना उच्च हस्तक्षेप के प्रबंध का अधिकार निहित है। यानी कि इसमें जो स्थानीय स्तर पर के लोग हैं, वो अपने कार्यों को बिना किसी हस्तक्षेप के उन्हें पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार में वहाँ के लोगों का अधिकार अंतर्निहित देखा जा सकता है। वहाँ प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रदत्त सुविधा मात्र है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो स्थानीय लोगों को मौलिक सत्ता के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है। जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन किसी भी प्रशासनिक संगठन में प्रशासनिक कुशलता प्राप्त करने का उपागम मात्र है, जिसमें अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसी सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उस अधिकारी द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं भारत में। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसे साम्यवादी देशों में प्रचलित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की धारणा से पूर्णतः भिन्न है। जहां इन साम्यवादी देशों में लोकतंत्र का केंद्रीकरण नेतृत्व की शक्तियों में विकेंद्रीकरण का समायोजन किया गया है, इन देशों की जनता जनतांत्रिक तरीके से प्रारंभिक तौर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा अपने शासन की नीतियां संबंधी व्यापक मुद्दों का चयन करती है। किंतु उन देशों की जनता जब प्राथमिक तौर पर व्यापक नीतियों का निर्धारण कर अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है तो इस बिंदु पर उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वो पूर्णतः स्थानीय स्तर पर या स्थानीय स्तर के अधिकारियों के हाथ में होता है। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय।